मंगलाचरण करते हैं। हणमो अरिहंताणम हणमो सिद्धाणम नमो आयिरियाणम हणमो वजायाणम हणमो लोए सवसाऊणम। तीन लोक के संदर्भ में अपने यहाँ दो पीरियड हो चुके हैं और आज यह तीसरा पीरियड अपना मध्य लोक के संदर्भ में है। एक पीरियड में अपन ने अधोलोक की चर्चा की, माने नरक की चर्चा की। दूसरे सेशन में ऊर्ध्व लोक की चर्चा की और अभी इस तीसरे सेशन में हम मध्य लोक की चर्चा बहुत संक्षेप में, जिसमें एक जनरल जानकारी थोड़ी बहुत अपने सामने आ जाए कि कैसा है मध्य लोक, रचना कैसी है मध्य लोक की, हम उसे यहाँ जानने जा रहे हैं। आपने लोक के संदर्भ में कल जो आकृति देखी थी, कल कुछ लोग जो नई थे समझ लीजिए आप, इस तरह की आकृति हम सबने देखी है। ये है तीन लोक, लोकाकृति जैन प्रतीक। ये पीछे भी फैला हुआ है और इस तरह की आकृति बनती है। बैक साइड में यदि हम देखते हैं तो सेंटर में एक राजू लंबा और एक राजू चौड़ा, माने पीछे से तीन राजू छोड़कर और आगे से तीन राजू पीछे जाने पर इस तरह से त्रस नाड़ी सेंटर में आती है, जो लोक के सेंटर में है। फ्रंट से देखते हैं सामने से तो यहाँ दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल में वो पीछे की साइड है। ये जो त्रस नाड़ी है, इस त्रस नाड़ी में ही मध्य में मध्य लोक है, नीचे अधो लोक और ऊपर ऊर्ध्व लोक है। अधोलोक की चर्चा और ऊर्ध्व लोक की चर्चा हो जाने के पश्चात अब हम मध्य लोक की चर्चा कर रहे हैं। ये मध्य लोक किस प्रकार का है तो देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ से चौकोर था, ये इस तरह की आकृति थी त्रस नाड़ी की, इस तरह की। अब इसमें बीच में अपन एक प्लेट डाल दें तो जो मध्य लोक की आकृति होगी वो आकृति होगी इस तरह की, चौकोर स्क्वायर में होगा। समझ पा रहे हैं आप किस तरह का होगा स्क्वायर? इसको आप ऐसा कर लीजिए और बीच में लाइन डाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है इस मध्य लोक में? मध्य लोक मतलब हमारी दुनिया। देखो, स्वर्ग में चले जाएं चाहे नरक में चले जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन जब तक अपने घर में नहीं आए तब तक शांति नहीं मिलती है। तो अभी फिलहाल तो अपना घर जो है वो मध्य लोक में है, लेकिन मध्य लोक में भी जो हम रहते हैं वो बहुत स्थूल दृष्टि से कहा जाता है। मध्य लोक तो बहुत बड़ा है, मध्य लोक में हम कहाँ रहते हैं? फिर उसमें मध्य लोक में जहाँ हम रहते हैं, फिर उसमें कहाँ रहते हैं? तो कहा मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, ऐसा चौको और मध्य लोक। और इस मध्य लोक के सबसे सेंटर में एक सुमेरु नाम का पर्वत, जो तीन लोक के विभाजन का आधार कहा था, ये जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है। इसको जमीन पे बिछा लेना और इस तरह से स्क्वायर होगा, ठीक है। सेंटर में ये पर्वत ऐसे खड़ा हुआ है, सुमेरु नाम का पर्वत, सुदर्शन मेरु है, 1,40,000 योजन उस पर्वत की हाइट है। ये पर्वत कौन सी जगह पर है? तो सबसे पहला द्वीप है इस मध्य लोक में, जिस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। नाम सुना है आपने, देखा भी है ना? मैं इसी तरह से एक बार यहाँ उदयपुर की बात है, 2004 में एक शिविर में 170 तीर्थंकर मंडल विधान का प्रसंग था और मैं ये जम्बू द्वीप की रचना, 170 तीर्थंकरों की रचना मैंने प्रारंभ की। जैसे मैंने कहा, आप लोग जानते हैं जम्बू द्वीप कहाँ है, तो एक बहुत बुजुर्ग महिला थी बीच में खड़ी हुई मेरे बिना कहे ही, और बोला, अरे पंडित जी हम जाकर के आए हैं हस्तिनापुर में। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जम्बू द्वीप हस्तिनापुर में है या जम्बू द्वीप पालीताना में है? कहाँ पर है? पालीताना में भी बनाया हुआ है वैसी रचना और हस्तिनापुर में भी बनाया हुआ है। अरे भाई साहब, पालीताना हो चाहे हस्तिनापुर हो चाहे हमारी ये पूरी दुनिया हो, हम लोग सब के सब जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप में हमारी दुनिया है, हमारी इस दुनिया में जम्बू द्वीप के मॉडल जरूर हो सकते हैं। अभी शायद सोनगढ़ में भी बन रहा है, प्रयास चल रहा है, उसका सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो जम्बूद्वीप की रचना बन रही है, तो मॉडल हो सकता है छोटा सा, लेकिन जम्बूद्वीप कितना बड़ा है और उस जम्बूद्वीप में भी हम कहाँ रहते हैं, अभी उसकी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। जम्बूद्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए एक समुद्र है, जिस समुद्र का नाम है लवण समुद्र। फिर चारों तरफ से घेरे हुए दूसरा द्वीप है जिसका नाम है धातकीखंड द्वीप। फिर उसके आगे पुष्करवर समुद्र, नहीं, धातकीखंड द्वीप के बाद में कालोदधि समुद्र, फिर पुष्कर द्वीप, फिर पुष्कर समुद्र, फिर वारुणीवर द्वीप, फिर वारुणीवर समुद्र, फिर क्षीरवर द्वीप, फिर क्षीर समुद्र, पांचवा समुद्र। नाम सुना होगा ना आपने, बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक के लिए जल वहां से लेकर के आते हैं पांचवें समुद्र से। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते पांचवें के बाद में छठा, सातवां, आठवें द्वीप का नाम नंदीश्वर द्वीप। फिर नौ, दस, ग्यारह, ऐसे बढ़ते बढ़ते सो बढ़ते 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 भी अपन देखेंगे तो असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। अभी असंख्य और अनंत में बहुत फर्क होता है, आप लोग इतना ही जान ले रहे हैं, क्योंकि अपने पास में समय की मर्यादा है, कम समय में ज्यादा काम करना है अपने को, ज्यादा चर्चा करनी है। असंख्यात का भी अंत आता है और अनंत का भी अंत आता है। अनंत शब्द का अर्थ हम लोग ऐसा समझते हैं कि इसका अंत नहीं आता होगा, जबकि ऐसा नहीं है, अनंत का भी अंत आ जाता है। आप कहेंगे अनंत का अंत कैसे आएगा, वो तो कहते ही उसे अनंत है, कि नहीं, अनंत एक संख्या है, अनंत भी बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत अनंत जो है उनका अभाव हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, और एक ऐसा अनंत है जिसे अक्षय अनंत कहते हैं, उस अनंत का कभी अभाव नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा काल है, तो आप कहेंगे अनंत काल, तो बीतता है कि नहीं, बीत जाता है, तो इसका मतलब अनंत काल खत्म हुआ ना। हमने पूछा आपसे कि संसार में परिभ्रमण करते हुए कितना काल हो गया, हिसाब अनंत काल हो गया, तो हमने पूछा अनंत काल हो गया, बीत गया अनंत काल, तो अनंत भी बीत गया ना, इसका मतलब अनंत भी खत्म होता है, बहुत लंबा टाइम है उसके लिए। खैर, द्वीप समुद्रों की संख्या असंख्यात कही गई है, इसमें से पहले द्वीप की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जिस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। हम लोग इसी जम्बू द्वीप में रहते हैं, बराबर। क्या है जम्बू द्वीप में, छह महापर्वत हैं, जिन छह महापर्वतों के कारण ये जम्बू द्वीप सात भागों में विभाजित हो गया है। पूरा जो जम्बू द्वीप है जिसमें हम रह रहे हैं, असंख्यात हैं, ऐसे जम्बू द्वीप जैसे दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, जम्बू द्वीप से दुगना दूसरा है, उससे दुगना दूसरा है, उससे दुगना दूसरा है, इस तरह से दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। इनमें सबसे पहले जम्बू द्वीप में छह महापर्वत हैं, जिनको कुलाचल कह करके भी पुकारा जाता है। ये सभी कुलाचल, ये सभी पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं, ईस्ट वेस्ट हैं। ठीक है, इन छह महापर्वतों के कारण आप देख पा रहे होंगे हमारा जम्बू द्वीप सात भागों में बट गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। छहों पर्वतों के सबके अलग अलग नाम बतलाए हैं, हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत, ये छह पर्वत हैं। पर्वतों के नाम थोड़ा से भी आप लोगों को याद हो जाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा आगे के लिए, आगे जो हम बात करने वाले हैं। हिमवन इस पर्वत का नाम है, फिर महा और जोड़ देवे, महाहिमवन, फिर निषद, इसके बाद में नील, नहीं, रुक्मी और शिखरी, ये छह महापर्वत। इन छह महापर्वतों के कारण जो सात क्षेत्र हो गए, उनमें से तीन क्षेत्रों के नाम नॉर्मली आप लोगों को याद होंगे, एक तो भरत क्षेत्र है, एक विदेह क्षेत्र है और एक ऐरावत क्षेत्र है। ये तीन तो सुने हैं ना सभी ने, और कौन से क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये सात क्षेत्र हैं। सब जगह मनुष्य रहते हैं, हम लोग जो रहते हैं वो इस भरत क्षेत्र में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं, हमें अपना एड्रेस पता है या नहीं है, इस पूरी दुनिया में हमारे रहने योग्य स्थान कौन सा है उसका भी हमारे को पता होना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हम पूरी दुनिया घूम करके आए हैं, ये जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया कितनी बड़ी है ये तो पता हो हमारे को, तो दुनिया का ही पता नहीं है हमारे को, हम कह रहे हैं दुनिया घूम लिया। हाँ दुनिया घूमे तो हैं, लेकिन इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों में भटकते हुए अनंत जन्म धारण किए हैं हमने, अनंत अनंत जन्म धारण करके पूरी दुनिया में घूमे हैं। तो यहाँ भरत क्षेत्र की क्या स्थिति है, एक एक क्षेत्र की हम बात करें, मनुष्य गति के जीव न केवल इसमें रहते हैं, इसके बाहर भी रहते हैं, जम्बू द्वीप के बाहर भी रहते हैं मनुष्य। हमारी जो दुनिया है वो पूरी दुनिया यहाँ है इस जगह पर, बहुत छोटा ये सर्कल बहुत बड़ा बना दिया मैंने, इस भरत क्षेत्र के अंदर अपन एक डॉट रखें, इसमें पूरी दुनिया आ गई। अभी आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी अपन विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, इसके अंदर क्या क्या है भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र की रचना किस प्रकार की है। मैंने ये जो डॉट बनाया है, इस डॉट जितने से हिस्से में अमेरिका भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, अफ्रीका भी आ गया, एशिया आ गया, सारे द्वीप आ गए, सारे देश आ गए, इधर से ग्रीनलैंड हो गया, उधर जो भी जितने देश हैं दुनिया में, ये सब के सब इस एक डॉट में आ गए। अब आप समझिए पूरे जम्बू द्वीप और पूरा मध्य लोक तो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ये सब केवल ज्ञान का विषय है भाई, जितना सूक्ष्म विवेचन यहाँ जैन दर्शन के अंदर किया गया है ना, मैंने दूसरे धर्म दर्शनों में भी पढ़ा है, लेकिन कहीं इतनी सूक्ष्मता से चर्चा नहीं मिलती है। विष्णु पुराण आदि के अंदर जहाँ चर्चा मिलती है हिंदू ग्रंथों में, मैंने वो भी देखे हैं, और अपने रिसर्च के अंदर कई जगह पर उनके प्रमाण भी दिए हैं, मैंने रेफरेंस भी दिए हैं उन सब ग्रंथों के, लेकिन सब फुटकर फुटकर प्रकरण मिलते हैं, विष्णु पुराण में मिलता है, शिव पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में है, कई जगह पुराणों में, लेकिन कहीं कुछ थोड़ी बहुत चर्चा कर ली, कहीं कुछ थोड़ी कर ली। जैन दर्शन में जितना सूक्ष्म विवेचन यहाँ मिलता है वैसा कहीं नहीं है। आप देखेंगे कितना बारीक विवेचन कौन कर सकता है, ये केवल ज्ञान के अतिरिक्त और किसी में सामर्थ्य नहीं है। सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त, दिव्य अंतरंग ज्ञान के अतिरिक्त और किसी में सामर्थ्य नहीं है जो इन बातों का वर्णन कर सके, इन बातों का प्रतिपादन कर सके। तो कहीं ना कहीं लिया है उन्होंने जैन दर्शन से, कहीं कोई ग्रंथ पढ़ा, कहीं कोई बात आई, तो उन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर, कई भी जम्बू द्वीप होते हैं, चतुर्द्वीपिक भूगोल की चर्चा की है, सप्तद्वीपिक भूगोल की चर्चा की है, बौद्ध दर्शन में भी की है, हिंदू दर्शन में भी की है। क्या होते हैं जब किसी संस्कृति में किसी संप्रदाय में कोई प्रकरण बहुत विशेष रूप से चलने लगता है, तो दूसरे धर्म संप्रदाय वाले भी उसके संदर्भ में कुछ न कुछ बातें करते हैं। तात्कालिक परिस्थितियों का तात्कालिक विद्वानों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस समय की चर्चा है उस समय में जितने विद्वान दूसरे धर्म संप्रदाय के होंगे, एक दूसरे से लिंक रहते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोई भी मुनिराज की बात करें, चाहे वो दिगंबर साधु हों, चाहे श्वेतंबर साधु हों, चाहे हिंदुओं के साधु हों, आपस में एक दूसरे को जानते तो है ना, एक दूसरे को जानते भी है, एक दूसरे के बारे में भी सुनते हैं। आज इनसे कौन अपरिचित है बाबा रामदेव से, और बाबा रामदेव किस तरह की बातें करते हैं ये कौन नहीं जानता है। तो उनसे प्रभावित होकर के कोई जैन संप्रदाय के कोई विशिष्ट विद्वान साधु संत को यदि उस विषय के ऊपर लेखनी चलाता है और उसमें उन विषयों को भी थोड़ा बहुत उल्लेखित करता है, तो ऐसा हो जाता है, आपस में आदान प्रदान इस तरह का होता रहता है। ठीक है ना, चलिए हम आते हैं वापस भरत क्षेत्र की तरफ। भरत क्षेत्र का क्या स्वरूप है, भरत क्षेत्र की रचना किस प्रकार की है, मैं थोड़ा सा और भरत क्षेत्र को यहाँ बना लेता हूँ। इधर देखिए आप भरत क्षेत्र कैसा है, ये भरत क्षेत्र धनुष के आकार का दिखता है अपने को, है ना, ऐसा दिख रहा है, ये भरत क्षेत्र की रचना है। आप कहेंगे कि दो लाइनें क्यों खींच दी है यहां आपने, यहां से एक ही थी। वास्तव में ये जो एक लाइन खींची है ना, तो जगह की कमी की वजह से खींची है। ये पूरा पर्वत है इतनी चौड़ाई वाला, जिसका नाम है हिमवन पर्वत। इसे हिमवन पर्वत और चारों तरफ लवण समुद्र इससे घिरा हुआ है, तीन तरफ से लवण समुद्र, लवण बीच में जो क्षेत्र है उसका नाम है भरत क्षेत्र। ईस्ट वेस्ट और साउथ तीन दिशा से लवण समुद्र के पानी से, और नॉर्थ में हिमवन नामक पर्वत होने की वजह से ये भरत क्षेत्र का एरिया हमारे सामने आ गया। इस भरत क्षेत्र में सबसे मध्य में, सबसे सेंटर में एक पर्वत और है, छोटा पर्वत। इस पर्वत का नाम है विजयार्द पर्वत। कल पूछ रहे थे ना आप लोग, कोई विद्याधरों के बारे में पूछ रहे थे। ये बीच में एक पर्वत जिसका नाम क्या बतलाया हमने, विजयार्द, विजयार्द पर्वत। हिमवन पर्वत के ऊपर एक सरोवर है, सभी पर्वतों के ऊपर एक एक सरोवर है। इस सरोवर का नाम है पद्म सरोवर, पद्म। इस पद्म सरोवर से दो नदियां निकलती है, निकलती तीन है, लेकिन भरत क्षेत्र में दो बहती हैं, एक का नाम गंगा और दूसरे का नाम सिंधु। और ये भरत क्षेत्र में दक्षिण दिशा की ओर चलती हुई विजयार्द पर्वत के नीचे गुफा है, उस गुफा में से होती हुई लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती है ये दोनों ही नदियां। एक पूर्व से निकलती है और दूसरी पश्चिम से निकलती है। नदियों के नाम गंगा और सिंधु, ये 14 नदियां हैं, महानदियां, जो पूरे जम्बूद्वीप में बहती है। गंगा, सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, रूप्य कुला, स्वर्ण कुला, रक्ता रक्तोदा, ये 14 महानदियां हैं। और उन 14 महानदियां सब की सब चारों तरफ लवण समुद्र है, जम्बूद्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए, तो लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती है सारी की सारी नदियां। इन दो नदियों के कारण, जिनका नाम गंगा और सिंधु कहा है, और बीच में एक विजयार्द पर्वत था, इसके कारण पूरा का पूरा भरत क्षेत्र 6 भागों में बट गया। आप देख पा रहे हैं 6 भाग हो गए हैं इस भरत क्षेत्र के। ये भरत क्षेत्र के 6 खंड कहलाते हैं। पहला खंड है आर्य खंड, और बाकी के जो 5 हैं ये कहलाते हैं म्लेच्छ खंड। म्लेच्छ नाम सुना है आपने? लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो अमेरिका आदि देश हैं, जिस देश में अभी हम खड़े हैं यहाँ, ये म्लेच्छ है। तो हिंदुस्तान में लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये अभी हमने बतलाया ना, ये जो आर्यखंड है ना, ये इस आर्यखंड में पूरी दुनिया आ जाती है, इतना बड़ा है ये आर्यखंड। आपके यहाँ जो और कोई समणी जी वगैरह आती है ना, आप किसी से भी चर्चा करेंगे ना, सब कहेंगे हाँ इसमें आ जाती है पूरी दुनिया, इतने से आर्यखंड में। माने जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया कितनी बड़ी है। अभी मैं इसके क्षेत्र की नाप बतलाऊंगा तो आपको लगेगा ओ इतना बड़ा है भरत क्षेत्र। जम्बू द्वीप एक कोने से दूसरे कोने तक देखते हैं तो 1 लाख योजन का है। 1 लाख योजन एक कोने से दूसरे कोने तक, कहीं से भी कहीं को नाप लेवे अपन, किधर से भी किधर, अब यदि अपन नापेंगे तो इसका जो डायमीटर है वो 1 लाख योजन है। अब इस 1 लाख योजन वाले जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र कितना है? तो तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, भरतस्य विषकंभो जम्बूद्वीपस्य 90% भाग है। माने इस जम्बूद्वीप के 190 पार्ट करें, 190 हिस्से करें हम इस जम्बूद्वीप के, अभी तो लग रहा है 7 पार्ट किए हैं, लेकिन 7 नहीं, 190 पार्ट करें तो उनमें से एक पार्ट ये होगा भरत क्षेत्र। कितना छोटा हो गया भरत क्षेत्र। तो कितना विस्तार होना चाहिए भरत क्षेत्र का, कि जम्बूद्वीप का था 1 लाख योजन का, डिवाइडेड बाय 190, तो कितना है? फिर एक और सूत्र दिया 190 में भाग बतलाने के बाद में, भरत है षड विंशति पंच योजन शत विस्तार है षट चैकोण विंशति भागा योजन से। तत्वार सूत्र के सूत्रों की बात कर रहा हूं मैं। क्या कहा है उसमें? 526 सहित 6/19 योजन इस भरत क्षेत्र का विस्तार है। ये विस्तार नॉर्थ साउथ की बात कर रहा हूं मैं। 526 से 6/19 योजन। अब इसमें 526 योजन का जो ये पूरा भारत क्षेत्र है, एक कोने से दूसरे कोने तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इसमें बीच में है 50 योजन का विजयार्ध पर्वत, उत्तर दक्षिण, ये 50 योजन का विजयार्ध पर्वत हो गया, और बाकी का उत्तर दिशा में और बाकी बचा हुआ दक्षिण दिशा में। तो सेंटर में यदि 50 योजन निकाल दे रहे हैं तो ये होता है 476 योजन, जिसमें से एक साइड में होता है 238 योजन। सिर्फ इसलिए ये बात बतला रहा हूं कि हम जिस आर्यखंड में रहते हैं उस आर्यखंड का विस्तार 238 योजन का है, और हमारी जो उपलब्ध दुनिया है ये पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ 3 योजन में आ जाती है। जैसे हम दुनिया कहते हैं, इस पूरी दुनिया को एक कोने से दूसरे कोने से यदि आप नापेंगे ना, मैं रोड मैप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्लाइट्स की बात नहीं कर रहा हूं, घूमते फिरते हुए जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेट बात कर रहा हूं ऊपर से नीचे तक, 2.5 से 3 योजन में पूरी दुनिया आ जाती है। नॉर्थ साउथ एरिया अपन देखेंगे तो कितना किलोमीटर होगा, 3 योजन का मतलब जानते हैं आप कितना किलोमीटर होगा, 18,000 किलोमीटर, 12,000 माइल। 12,000 मील में पूरी दुनिया, हाँ जी बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं है। आप यदि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ऊपर से लेकर नीचे तक, माने कश्मीर से कन्याकुमारी से यदि हम नापते हैं तो 2,000 किलोमीटर होते हैं, सिर्फ 2,000 किलोमीटर के अंदर पूरी दुनिया आ जाती है ऊपर से नीचे तक। अब हम इंडिया की बात कर रहा हूं, अरे वो किधर किधर घूम रहे हैं आप, अब इंडिया कौन सी जगह पर है, ये वर्ल्ड का मैप है, मान लीजिए यहाँ इंडिया है, ठीक है ना, ये हमने इंडिया बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी ये जो इंडिया है, इस इंडिया से हम कह रहे हैं ऊपर जाओ आप, इधर एशिया में, इधर एशिया में ये है इंडिया, भी ऊपर चले तो यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, दुनिया के दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका तो इधर आ गया, यहाँ इधर जाने की बात नहीं कर रहा, आप ऐसे नापिए पूरा इंडिया, यदि 2000 किलोमीटर में है, आप वर्ल्ड का मैप देखिए और उस वर्ल्ड के मैप में इसको स्केल से नापिए, और स्केल से नाप करके 2-4 ऊपर रख दीजिए और 1-2 नीचे रख दीजिए, इतना नहीं तो है दुनिया, इतनी है ना, तो कितना होगा 18,000 किलोमीटर, ख्याल में आ रही है कुछ, तो कठिन तो नहीं है तो बात, इजीली आप यदि वो मैप देखते हैं वर्ल्ड का मैप, और आप यदि उसमें नाप करके देखते हैं तो बहुत इजीली बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए खैर, 238 योजन के आर्यखंड में हमारी दुनिया 2.5 योजन में 3 योजन के अंतर्गत आ जाती है, इसका मतलब पूरा भारत क्षेत्र कितना बड़ा होगा, और भारत क्षेत्र से कितना गुना ज्यादा, 190 गुना ज्यादा जम्बू द्वीप है, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्रफल तो बहुत ज्यादा होगा, और जम्बू द्वीप से दुगना फिर लवण समुद्र, लवण समुद्र से दुगना धातकी खंड, धातकी खंड से दुगना और आगे कालो नदी, कालो नदी से दुगना पुष्करवर, और पुष्करवर द्वीप भी आधा वहां तक है, 2.5 द्वीप वहां तक है, मनुष्य मनुष्य कहां तक है, अकेले इसमें नहीं, अकेले भारत क्षेत्र में नहीं है, भारत क्षेत्र से यदि अपन और आगे निकलते हैं तो भारत क्षेत्र से आगे निकलने के बाद में और आगे बढ़े, हेमवत क्षेत्र, हरी क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, सब जगह मनुष्य गति के जीव हैं। इसके आगे धातकी खंड है, लवण समुद्र क्रॉस करने के बाद में दूसरा द्वीप, वहां भी मनुष्य है, उसके आगे और समुद्र है और फिर द्वीप है, उसमें भी मनुष्य है। अभी जो कल अपन प्रलय की बात कर रहे थे ना, वो प्रलय तो सिर्फ इस आर्यखंड में आती है, इतने से हिस्से में, अपने जैसे मनुष्य सब जगह, कहीं भोग भूमि है, कहीं कर्म भूमि है। हाँ, सब मनुष्य मिलाकर के पूरे 2.5 द्वीप से जाते हैं, 45 लाख योजन का क्षेत्र है 2.5 द्वीप का, 2.5 इसलिए कहते हैं, देखिए आप ये जम्बू द्वीप है ना, जम्बू द्वीप को मिटा दें अपन, हैं? अपनी सामर्थ्य नहीं है, अकृत्रिम है, ये कोई मिटा नहीं सकता इसको, जम्बू द्वीप को मिटाने वाला कोई नहीं है। चलिए लेकिन फिर भी अपन जम्बू द्वीप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अभी ये इतना तो ख्याल में आ गया ना कि 5 ये 6 बीच में पर्वत हैं और 7 क्षेत्र हैं, ये जम्बू द्वीप, बराबर। जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए एक लवण नाम का समुद्र। पहला द्वीप, फिर समुद्र, फिर इसके बाद में दूसरा द्वीप है, इसका नाम है धातकी खंड। फिर धातकी खंड, ये हो गया द्वीप, धातकी खंड। इसके बाद में फिर चारों तरफ से घेरे हुए समुद्र है, कालोदधि समुद्र। अब इसको घेरे हुए फिर एक और द्वीप है जिसका नाम है तीसरा द्वीप, नंबर होगा तीसरा, थर्ड नंबर पर पहुंचेंगे हम। ये हो गया थर्ड नंबर पर एक और द्वीप, ठीक। अब ये जो तीसरा द्वीप है इसका नाम है वास्तव में पुष्कर, पुष्कर द्वीप, लेकिन पुष्कर अर्ध कहते हैं। किस लिए कहते हैं कि ये जो द्वीप पूरा है इसमें सेंटर में गोलाकार दो भागों में इसको बांटने वाला एक पर्वत है, इस तरह से चारों तरफ फैला हुआ, समझ रहे हैं। इस तरह से एक पर्वत है बीच में, तो आधा पुष्कर द्वीप रह गया अंदर और आधा पुष्कर द्वीप हो गया बाहर। तो ये जो हाफ हो गया है, ये एक नंबर, ये दो नंबर और ये हाफ, तो ये टू एंड हाफ हो गया टोटल, ये है ढाई द्वीप। तो ये जो पर्वत है इस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। इस पर्वत को मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं क्योंकि मनुष्य यहां तक रहता है, इसके बाहर मनुष्य जाता भी नहीं है और मनुष्य जन्म भी नहीं ले सकता। किसी भी मनुष्य के रहने की जो मर्यादा है, किसी भी मनुष्य के रहने की जो सीमा है, वो सिर्फ ढाई द्वीप है। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्यों का सद्भाव बिल्कुल नहीं है, सिर्फ तिर्यंच गति के जीव रहते हैं। आगे के असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, उन द्वीपों में तिर्यंच गति के जीव, भोग भूमिया जीव रहते हैं, जो कि सब मर के देव गति में जाते हैं, तिर्यंच गति के जीव। आप समझ लीजिए, उत्कृष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त करके हम देव गति चाह रहे हैं, वो देव गति तो तिर्यंचों को मुफ्त में मिल जाती है। ये तो बहुत अच्छे जैन दर्शन अपने को मिल गया है, माने चिंतामणि रत्न मिल गया है, अपूर्व निधि मिल गई है। इस जैन दर्शन को प्राप्त करके मुक्ति का मार्ग प्रारंभ कर सकते हैं हम, हमारे जीवन में मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो सकता है, और हमारे को विषय भोग दिखाई देते हैं देव गति के। क्या हो गया हमारी बुद्धि को, लेकिन कुछ सार नहीं है उसमें, उसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। इस ढाई द्वीप तक पंच भरत क्षेत्र हैं, पांच ऐरावत क्षेत्र हैं और पांच विदेह क्षेत्र हैं। अभी हम लोग सिर्फ जम्बू द्वीप के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जम्बू द्वीप के बाहर भी भरत क्षेत्र हैं। जैसे अभी अपन ने जो जम्बू द्वीप देखा था ना, ये अंदर वाला, ये जो अंदर वाला जो ये द्वीप है, इस द्वीप का नाम था जम्बू द्वीप, ठीक। इस जम्बू द्वीप के अंदर अपन ने देखे छह महापर्वत और सात क्षेत्र, बीच में सुमेरु पर्वत। इनमें एक भरत था यहाँ और एक विदेह था। अभी धातकी खंड द्वीप में दो भरत हैं, दो विदेह हैं, दो ऐरावत हैं, सब रचना दुगनी है। इस धातकी खंड द्वीप में आधा पुष्कर जो द्वीप है, इस आधे पुष्कर द्वीप के अंदर भी पूरी की पूरी रचना डबल है। तो कुल मिलाकर के एक भरत यदि जम्बू द्वीप में है तो दो भरत धातकी में होंगे, दो भरत पुष्कर अर्ध में होंगे, ठीक है, पांच हो जाएंगे। ऐसे ही एक विदेह जम्बू द्वीप में, दो विदेह धातकी खंड में और दो विदेह पुष्कर अर्ध में, तो पांच हो जाएंगे। एक मेरु जम्बू द्वीप में, दो धातकी खंड में और दो पुष्कर अर्ध में, तो पांच मेरु पर्वत हो जाएंगे। सब चीज पांच गुना है। जम्बू द्वीप में जो भी हम बात करेंगे वो चीज पूरे ढाई द्वीप में पांच गुना है। हाँ, उनके भी सेंटर में ही है। देखिए एक्चुअल में क्या है, रचना किस प्रकार की है, देखिए गोलाकार है, चारों तरफ घेरे हुए हैं। अभी ये जो दूसरा द्वीप है धातकी खंड, इस धातकी खंड द्वीप में दो पर्वत हैं जो इस पर्वत को विभाजित करते हैं पूर्व पश्चिम, इस तरह से। इनका नाम है ईश्वाकार पर्वत, अब पूर्व धाप्ती खंड और पश्चिम धाप्ती खंड, तो पूर्व धाप्ती खंड में एक मेरु पर्वत और पश्चिम धाप्ती खंड में एक मेरु पर्वत, इस तरह से न केवल मेरु पर्वत, यहां देखिए वही छह पर्वत हैं इस तरह से, एक दो तीन चार पांच और छह, और सात क्षेत्र हो गए, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये सात क्षेत्र, इसी तरह से सात क्षेत्र इधर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें प्रलय कहाँ आ रही है, प्रलय आती है इस भरत क्षेत्र में, इस भरत क्षेत्र में, इधर जो भरत क्षेत्र है उसमें, और इसी तरह से पुष्करार्ध है ना, इधर दोनों साइड भरत होगा और बीच में एक और समुद्र है। भरत में प्रलय आती है भरत क्षेत्र के आर्य खंड में, ऐरावत क्षेत्र के भी आर्य खंड में, इधर ऐरावत क्षेत्र है उसमें भी पांच खंड है, छह खंड है, और उसके भी आर्य खंड के अंदर प्रलय आती है। हम लोग वापस आ जाते हैं भरत क्षेत्र की तरफ, भरत क्षेत्र के जो ये छह खंड यहाँ बतलाए गए हैं, इन छह खंडों में से एक खंड का नाम है आर्य खंड, जिसमें हम रहते हैं, और बाकी के जो पांच खंड बच गए हैं उन पांच खंडों का नाम है म्लेच्छ खंड। चक्रवर्ती सम्राट उन म्लेच्छ खंडों के अंदर भी जाता है और आर्य खंडों पर भी विजय प्राप्त करता है, ये वे छह खंड हैं जिन छह खंडों को चक्रवर्ती जीतता है। ठीक है, छह खंड का राजा होता है ना चक्रवर्ती सम्राट, भरत चक्रवर्ती छह खंड जीत लिए, हमारी दुनिया कितनी सी है चक्रवर्ती के सामने, 60,000 वर्ष में, कितना लंबा काल उसको लगा पूरी दुनिया को जीतने में, पूरी दुनिया मतलब तीन लोक नहीं, पूरी दुनिया मतलब पूरा मध्य लोक नहीं, पूरा मध्य लोक क्या, पूरा जम्बू द्वीप भी नहीं, जम्बू द्वीप का सिर्फ और सिर्फ एक भरत क्षेत्र, और ऐसा कहा जाता है कि उस भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र पड़ा, कथन मात्र है क्योंकि ये तो अकृत्रिम है, अनादि काल से है, ऐसा कैसे हो सकता है, उपचार से ऐसा कह सकते हैं अपन, है ना, बहुत स्थूल कथन है। इन छह खंडों को जीतने के बाद वो अपना नाम लिखने के लिए एक पर्वत पर जाता है, उस पर्वत का नाम है वृषभाचल पर्वत, जो उत्तर दिशा की ओर म्लेच्छ खंड में मौजूद है। अनार्य, एक आर्य बाकी पांचों अनार्य, हाँ मनुष्य हैं लेकिन धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है, धर्म वृत्तियां वहां नहीं है, आर्य नहीं है, हाँ लोग अनार्य कहते हैं क्या, नहीं यहां से म्लेच्छ खंडों से नहीं जा सकते, विदेश क्षेत्र से जा सकते हैं, अभी जो जम्बू द्वीप में दूसरा और क्षेत्र है वहां से मोक्ष जा सकते हैं, म्लेच्छ खंड से मोक्ष नहीं जा सकते। चक्रवर्ती छह खंड को जीत लेने के पश्चात जब यहाँ जाता है विजयार्ध के पार इस वृषभाचल पर्वत के ऊपर नाम लिखने के लिए, तो पूरी की पूरी शिला जो कि 100 योजन का है ये पर्वत, बिल्कुल जगह नहीं मिलती उसको, वृषभाचल नाम है उसका, वृषभाचल नाम का पर्वत कांकनी नाम के रत्न से लिखता है, 14 रत्न है ना इसके, चक्रवर्ती के 14 रत्न, 9 निधियां, तो जो 14 रत्न है उनमें से 7 रत्न तो चेतन होते हैं और 7 रत्न अचेतन होते हैं, अपना नाम लिखने के लिए वहां जाता है, और इतने नामों से भरी हुई है कि एक नाम लिखने के लिए जगह नहीं है, सब चक्रवर्ती हो चुके हैं, अरे जो भी चक्रवर्ती भविष्य में होंगे सब नाम लिखने के लिए जाएंगे और एक नाम मिटान करके ही अपना नाम लिखना पड़ता है, अनंते चक्रवर्ती हो चुके हैं भूतकाल में, अनंते तीर्थंकर हो चुके हैं भूतकाल में, काल का कोई स्टार्टिंग नहीं है ना, और भविष्य में अनंत होते रहेंगे, लेकिन फिर भी चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग काग वीत सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग, एक तरफ सम्यक दर्शन है, पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि, समस्त पर द्रव्यों से भिन्न अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की रुचि, वो यदि नहीं है तो सब बेकार है, छह खंड का राजपाट किसी काम का नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट शुभोम और क्या नाम ब्रह्मदत्त दोनों मर के नरक में चले गए, सप्तम नरक में बैठे हैं अभी, वहां की घोर यातनाएं भोग रहे हैं, कहां से चक्रवर्ती के अपार वैभव भोग, छह खंड का राजपाट, इतना लंबा चौड़ा राजपाट है चक्रवर्ती का, यदि अभी मैं वर्णन करने लगूं तो आधा एक घंटे तक चक्रवर्ती के वैभव का वर्णन करता रहूं। 96,000 रानियां कहां से आती है? 32,000 रानियां होती है आर्यखंड की, 32,000 रानियां होती है म्लेच्छखंडों की, और 32,000 रानियां होती है विजयार्ध जो पर्वत है ना, ये इस विजयार्ध पर्वत की हाइट है 25 योजन। 50 योजन तो विस्तार कहा मैंने, नॉर्थ साउथ, 25 योजन उसकी हाइट है। उसकी हाइट पर कुछ ऊपर जाने पर दोनों तरफ से कट गया है और वहां विद्याधरों की नगरियां हैं। 110 नगरियां कही है जैसे विद्याधरों की श्रेणियां कहा है विजयार्ध पर। अधर्मी हो गई, बिल्कुल अधर्मी हो गई, मतलब ऐसा कह सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज, कोई बात नहीं। लेकिन लेकिन जो अधर्मी थी वो यहां आकर के जिस घर में आती है उस घर का धर्म मानती है, ऐसा तो विधान है यहाँ का अपने सब जगह। जो जिस घर में जाएगी उस घर में जो धर्म चलता है उस धर्म को मानेगी। तो यहाँ आकर के सब जैन हो जाती है, सब जैन धर्म मानती है। चक्रवर्ती सम्राट की रानियां, कितना वैभव होगा, कितना उनके पास में अपार धन संपत्ति वैभव होगा, लेकिन वे अष्टानिका और दशलक्षण जैसे पर्वों में जब मंदिर जाती हैं तो समझिए आप ऐसे निकलती हैं, ऐसे समूह निकलता है माने आर्यिकाओं का, मुनिराजों का, श्रमणियों का समूह निकल रहा हो, साध्वियां निकल रही हो ऐसे बिल्कुल सादा सफेद वस्त्र में, बिल्कुल गहने नहीं, बिल्कुल। क्या प्रदर्शन करना है इस पुद्गल में, दम क्या है? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ चैतन्य खजाना भूल गया, चेतन को मिला जब नरकन तो फिर होश में आना भूल गया, इस भूल में इतना फूल गया। रमेश भाई क्या कह रहे हैं? नर्तन मिल गया ना इसको, होश ही नहीं है इसको, घमंड में अभिमान में कितना चकनाचूर हो रहा है। इस भूल में इतना फूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। क्या कह दिया? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ चैतन्य खजाना भूल गया, हीरे माणिक मोती जवाहरात पौद्गलिक संपत्ति के ऊपर मुग्ध हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। 96,000 रानियां हैं, इतने घोड़े हैं, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 14 रत्न, 9 निधियां, एक एक रत्न और एक एक निधि की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 1,000 देव, पटरानी भी एक रत्न है उसकी रक्षा करने वाले 16,000 देव, कितना अपार वैभव है हम सोच नहीं सकते हैं। चक्रवर्ती का भोजन यदि बनता है तो 365 दिन भोजन बनाने के लिए 365 व्यक्ति नहीं होते, 365 रसोई के ग्रुप होते हैं भोजन बनाने वालों के। और आपको पता है एक ग्रुप सिर्फ साल में एक ही दिन भोजन बनाता है। अब आप सोचेंगे ये नौकरी बहुत अच्छी है, 366 दिन में 365 दिन आराम करें और एक दिन भोजन बनाएं, कि नहीं नहीं 366वें दिन बनने वाले भोजन की तैयारी 365 दिन चलती है, तब जाकर के 366वें दिन भोजन बन पाता है। आप सोचिए कैसा भोजन बनता होगा चक्रवर्ती के लिए, कितनी ताकत होती है चक्रवर्ती की। पांचों इंद्रियों की सामर्थ्य की चर्चा की है घुमंत सारादि ग्रंथों में, ऐसी चर्चा की है सर्वाधिक इंद्रियों की सामर्थ्य होती है चक्रवर्ती में। स्पर्शन इंद्रिय की सामर्थ्य इतनी कि 9 योजन तक की बात को जान लेवे, रसना इंद्रिय की सामर्थ्य इतनी कि 9 योजन तक की बात को जान लेवे, घ्राण इंद्रिय की भी, कर्ण इंद्रिय की सामर्थ्य इतनी कि 12 योजन तक की बातों को सुन लेवे, चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य इतनी कि 47,250 योजन तक लगभग, इतनी दूरी तक चंद्रमा में स्थित अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर लेवे, सूर्य में स्थित अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर लेवे अपने घर की छत पर खड़ा होकर के। अयोध्या में आर्यखंड में जहां चक्रवर्ती का महल है, महल की छत पर जाता है और महल की छत से वर्ष में कुछ दिन विशिष्ट दिनों में जब सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन के पहली शाखा में होता है, गली में होता है, तो अपने घर की छत से उदित होते हुए सूर्य में स्थित अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर लेता है, कैसी चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य है उसकी। लेकिन उस चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग जगत के पदार्थों को देखने में नहीं करता। ये जो रिद्धियां पांचों इंद्रियों की प्राप्त हो गई है, इन रिद्धियों की तरफ लक्ष्य नहीं करता। इन रिद्धियों का आकर्षण चक्रवर्ती के जीवन में नहीं है, उसका लक्ष्य अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा के ऊपर है। अरे आत्मा पर जिसका लक्ष्य होता है, उसे चक्रवर्ती जैसी पदवी है, उसे चरणों में लौटती है, कोई कीमत नहीं है। तीन लोक की संपदा एक तरफ, चक्रवर्ती का राज्य एक तरफ, और ये तत्व ज्ञान एक तरफ, त्रिकाली ध्रुव आत्मा एक तरफ, भगवान आत्मा एक तरफ, ज्ञायक आत्म तत्व की चर्चा एक तरफ, आपको क्या सुहाता है? अपनी जो ये सम्यक दर्शन के संदर्भ में चर्चा चलती है छेड़ाला में, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, तो ये सब परद्रव्य है कि स्वद्रव्य है? सब परद्रव्य है, तो सबसे भिन्न अपने आत्म तत्व की रुचि होनी चाहिए ना। लेकिन अभी चक्रवर्ती का वैभव सुन करके, उसकी चर्चा सुन करके हमारे मुंह में पानी आने लगता है। और जो वैभव है चक्रवर्ती का, तो ठाट ही अलग ही है। क्या ठाट है उनसे पूछो, क्या हालत होती है चक्रवर्ती की? रुचता नहीं है, पसंद नहीं आता है, भोग भोगते हुए छटपटाता है। सम्यक दृष्टियों के भोग निर्जरा के हेतु के, वो भोग भोगता ही नहीं है, अंदर से कटा हुआ है, उससे अंदर से टूटा हुआ है, अंदर में रस नहीं है उस चीज के प्रति, बाहर में प्रवृत्ति होती हुई दिखाई देने पर भी। हम बाहर से प्रवृत्तियों को खींचते हैं, अंदर का रस नहीं टूटता है, उल्टा है मामला। हम क्या करते हैं, हम बाहर में तो करते नहीं है कुछ भी, बाहर में तो रोकते हुए दिखाते हैं, और अंदर में उनके प्रति रस बैठा हुआ है। और चक्रवर्ती बाहर में एक प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देवे, अंदर से रस टूट गया है, तो अंतरंग रस टूटने की बात है भाई। तो हम यहाँ बात कर रहे थे इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के संदर्भ में। इस भरत क्षेत्र में एक विजयार्ध नाम का पर्वत है, इस पर्वत का नाम भी विजयार्ध क्यों पड़ा? चक्रवर्ती की विजय जहां होती है आधी, उसका नाम है विजय अर्ध। कौन सा पर्वत है विजयार्ध? ये पर्वत तीन खंड साउथ में है, तीन खंड नॉर्थ में, उत्तर और दक्षिण में, तो तीन विभाजित हो गए ना। तो तीन खंड, तो मतलब ये तीन तीन के रूप में जो विभाजित कर देवे, विभाजन कर देवे, जहां चक्रवर्ती की विजय आदि होवे, उसका नाम है विजय अर्ध, विजय अर्ध पर्वत। ठीक है ना, ये लिखा था अपने यहाँ विजय अर्ध पर्वत। 110 विजय अर्ध की श्रेणियां बतलाई हमने, जहां नगरियां हैं, एक एक नगरी हिंदुस्तान से बड़ी है, और वहां विद्याधर रहते हैं मनुष्य गति के। कल आपने पूछा था ये जो विजयार्ध पर्वत है, इसके ऊपर टॉप शिखर की बात नहीं कर रहा, 10 योजन ऊपर जाकर चारों तरफ से, दोनों तरफ से कट गया है उत्तर और दक्षिण से, और वहां नगर बसे हुए हैं, देश बसे हुए हैं। हिंदुस्तान से बड़ा एक एक देश है, अमेरिका से बड़ा एक एक देश है, समझ लो आप। तो उस देश में वहां की रानियां लेकर के आता है, उनसे विवाह करता है, और विवाह के पीछे भी सीधी सीधी सी बात है, अरे जिनके घर की कन्या हमारे यहाँ आ गई तो वो अपने आप ही हमारी आधीनता स्वीकार कर लेंगे, तो 32,000 राजा होते हैं उसके अधीन, 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती सम्राट के अधीन होते हैं। ये विजय, ये जो विद्याधर हैं जो हमने कहे, ये सब मनुष्य गति के हैं, विद्याओं के स्वामी होते हैं, असी मसी कृषि आदि ये सब उन सबके जीवन में होता है। ठीक है, खाते पीते हैं, घूमते हैं, और अन्य सारी प्रवृत्तियां उनके जीवन में दिखाई देती है, मनुष्यों की तरह ही, मनुष्य ही है कुल मिलाकर के। प्रथमानु योग में अपन ने बहुत सारी ऐसी कथाएं पढ़ रखी है, जिनमें अपन ने सुना है कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसी चर्चाएं सुनते पढ़ते हैं ना अपन। अपने को ऐसा लगता है वो विद्याधर आया था, और विद्याधर आकर के किसी सती को उठा करके ले गया, और दूर से उसने अपनी पत्नी को आते हुए देखा तो जंगल में पटक दिया, छोड़ दिया उसको। तो विद्याधर और कोई नहीं होते, मनुष्य गति के जीव और विजयार्ध पर्वत पर रहने वाले जीव ही होते हैं। ठीक है, और कुछ इसके संदर्भ में आपको पूछना हो तो आप बोलिए, नहीं तो मैं 2-4 मिनट में आपको ले जाना चाहता। एक ही चलता है सब जगह सेम, भरत और एरावत दोनों में टाइम सेम चलता है, 6 काल का परिवर्तन होता है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी का जो परिवर्तन है ये भरत और एरावत में ही है, बाकी कहीं नहीं है। हमेशा सेम टाइम रहेगा महाविदेह में, हमेशा चौथाई काल रहेगा, चौथे काल जैसी परिस्थिति, चौथा तो 1-2-3 नहीं है, तो चौथा कैसे कह रहे हो? नंबरिंग है ना, लेकिन जैसा चौथे काल में हमारे यहाँ परिस्थिति होती है, तीर्थंकर होते हैं, वैसी परिस्थिति वहां अनादि अनंत होती है विदेह क्षेत्र में। सुखमा दुखमा सुखमा दुखमा सुखमा। हाँ, तीर्थंकर तीर्थंकर वर्तमान में विदेह क्षेत्र में है, ये जम्बूद्वीप। हाँ, हमेशा रहते हैं ना, विद्यमान 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं वहां, लेकिन वो जो 20 तीर्थंकर है वो 20 के 20 तीर्थंकर यहाँ यहाँ जम्बूद्वीप में नहीं है, पूरे ढाई द्वीप में है। जम्बूद्वीप में चार ही तीर्थंकर हैं, सीमंदर, युगमंदर, बाहु और सुबाहु। ये चार तीर्थंकर वर्तमान में इसी धरती पर, जिस धरती पर हम रहते हैं, विदेह क्षेत्र कहीं ऊपर नहीं है, इसी धरती पर है। और वहां सीमंदर भगवान का समव शरण है, उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है, देव लोग आते हैं, दिव्य ध्वनि का लाभ लेते हैं, तीन तीन चार चार समय तक उनका उपदेश होता है। सब मनुष्य गति के जीव भी जाते हैं, त्रियंश गति के जीव भी जाते हैं, 12 सभाएं लगती है तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में। उसी भगवान कुंद कुंद स्वामी जाके आए थे विदेह क्षेत्र, माँ विदेह क्षेत्र जाकर के आए, वो सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके आए, 8 दिन रह करके। पूज्य पाद स्वामी के बारे में भी उल्लेख मिलता है, जाकर के आए थे, 8 दिन रहे वहां। अब इनमें भी दिन रात व्यवस्था अलग अलग प्रकार से, बहुत सारे प्रकरण हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कौन सी दिशा में मुड़ जाऊं, तो जब किधर अपने को दर्शन करना है, एक मोड़ आया है बीच में, तो आप सोचते हैं कौन सी तरफ घूमे। भरत क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारी चर्चाएं और की जा सकती है, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा। हाँ बोलिए। बहुत छोटी, सब यही है। एक्चुअल में क्या है, आप ये सोच रहे होंगे कि वर्तमान साइंस के माध्यम से दिखता क्यों नहीं है, सैटेलाइट के माध्यम से दिखता क्यों नहीं है, पूरा वर्ल्ड पूरी दुनिया जब ऊपर से दिखती है तो ये क्यों नहीं दिखते हैं, ये विदेश क्षेत्र क्यों नहीं दिखता, सुमेरु पर्वत क्यों नहीं दिखता। मैं आपसे कहता हूँ, अभी आप यहाँ यदि कुछ कैमरा लगा देवे तो वो कैमरा कितनी एरिया को कवर कर पाएगा, इट डिपेंड्स वो कितनी हाइट पर है, उसी पे निर्भर करेगा कितनी हाइट पे लगा हुआ है। तो कितनी हाइट पर सैटेलाइट सेट है उतने एरिया को कवर करता है। हमने कहा हमारी दुनिया कितनी है, दो तीन योजन में, और आर्यखंड कितना है, 238 योजन में, तो बाकी तरफ क्या फैला हुआ है कि बाकी तरफ मैक्सिमम पानी है, जो लवण आदि समुद्रों का जल समझ सकते हैं अपन, नदियों का जल समझ सकते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये भरत क्षेत्र की पृथ्वी मध्य में से एक योजन का मतलब लगभग 4,000 मील ऊपर उठ गई पृथ्वी। कैसे ऊपर उठ गई, इस तरह से कहीं उबड़ उबड़ खाबड़ इस तरह से कहीं ऊपर उठी गई ये पृथ्वी, ख्याल में आ रही है बात। अब ये इस तरह से ऊपर उठ जाने के कारण जब सैटेलाइट से ऊपर से चित्र लिया जाता है, तो क्योंकि उसका बॉटम तो दिखेगा नहीं, ऊपर से चित्र लेंगे तो जो भी आपको गूगल पर इमेज दिखती है वर्ल्ड के पूरी दुनिया की, वो सारी की सारी एनिमेशन है, बनाई हुई है, पिक्चराइज किया हुआ है वो सब। जो भी आपको पूरी जो ग्लोब जैसा दिखेगा ना, वो पिक्चराइज किया हुआ है वो, क्योंकि एक बार में पिक्चर एक ही तरफ से लिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने उस चीज को पूरा बना करके उसको पूरा गोल और बॉल जैसा दिखाते हैं, फिर उसको घूमता हुआ दिखाते हैं, पूरा आप गूगल पर देखेंगे जैसा दिखता है, ऐसा नहीं है। हम भी कह रहे हैं गोल है ऊपर से देखने पर, लेकिन वो हाफ बॉल की तरह है। अभी मैं कहता हूँ यहाँ से कोई मान लीजिए रुमाल है, कोई चीज है, हमने ये बीच में से पूरे भरत क्षेत्र की पृथ्वी है, और भरत क्षेत्र की ये पृथ्वी बीच में से आर्यघंट इस तरह से उठ गया। अब ऊपर से फोटो लो तो क्या दिखता है, पोर्शन गोल दिखाई देता है, तो हाफ बॉल की तरह है ये आर्यघंट की पृथ्वी, जैसे हम कह रहे हैं कि ये गेंद की तरह है। बहुत कम, चारों तरफ पानी होने की वजह साइंस भी ये कहती है, वैज्ञानिक लोग भी ये कहते हैं कि साहब ये जो बातें हैं ना, हम इस दुनिया का अंत नहीं देख पाए कहीं भी। उनसे पूछो समुद्रों का अंत कहाँ है, कहाँ तक है पानी, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में तो कुछ नहीं, बस पानी पानी है सब जगह, तो कहाँ तक है पानी ये तो बताओ, एंड नहीं पा सकते हम कहीं भी, एंड आएगा कहाँ से। आगे बढ़ेंगे तो इधर तो लवण समुद्र आ जाता है, उधर गंगा सिंधु नदियां आ जाती है, बीच में विजयार्ण पर्वत है, उस तरफ नहीं जा सकते हैं, तो पूरे भरत क्षेत्र को भी कवर नहीं कर सकते। ये तो सब जैन दर्शन के आधार पर कही गई बातें हैं, बहुत विस्तार है, बहुत सारे प्रकरण हैं, कहाँ तक अपन चर्चा करें। अभी अपन ने विदेश क्षेत्र की चर्चा की नहीं है, भविष्य में कभी अवसर मिलेगा तो आप लोगों को विदेश क्षेत्र लेकर के चलूंगा, लेकिन भाई दुनिया के किसी क्षेत्र में सुख नहीं है, सब जगह देखियो चांद, कहीं भी चले जाओ आप विदेश क्षेत्र में चले जाओ, चाहे भूमि में चले जाओ, ऐरावत क्षेत्र में चले जाओ, चाहे भरत क्षेत्र में रहो, लेकिन निज क्षेत्र में जब तक नहीं आओगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। भरत क्षेत्र में सुख नहीं मिलेगा, विदेश क्षेत्र में भी सुख नहीं मिलेगा। विदेश क्षेत्र में जाने वाले सुखी हो जाते हो, इस भ्रम में मत रहना। विदेश क्षेत्र में जाकर के भी विदेही आत्मा को जो देखते हैं वे सुखी होते हैं। माने सुख का मार्ग तो देह के भीतर मौजूद एक जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है उसका अवलंबन मात्र ही है। जो उसका अवलंबन लेते हैं वही सुखी होते हैं। और हम लोग तब इस प्रकरण से दृष्टि हटाकर, इस विषय से दृष्टि हटाकर, और इस विषय की जो ज्ञाता है ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा, उनके द्वारा बतलाए गए त्रिकाली ध्रुव आत्मा के स्वरूप को समझें, उसे पहचाने जाने और उसमें लीन हो गए, इसी भावना से मैं इस प्रकरण संबंधी चर्चा को अभी यहाँ विराम देता हूँ। और अपना दूसरा प्रवचन जो दूसरे विषय पर है, छेड़ाला पर, वो अपन यहाँ प्रारंभ करते हैं। और महावीर भगवान ने की